समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस। और रम्या, आज से ही हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है।
जी जी।
और इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आकाशवाणी का आराधना यूट्यूब चैनल नवरात्र के लिए आज से 6 अप्रैल तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसे जरूर देखें और सुने और साथ ही अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रम्या। रम्या, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। और जैसा कि आपने कहा, आज हिंदू नववर्ष है तो हम अपने सारे श्रोताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम एज यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एज आकर्षिता सेड, आई एम रम्या एंड बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू गिव यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 minutes, but first we begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi emphasizes the government's commitment to providing best medical treatment to the poor, inaugurates and lays foundation stone of development projects at Nagpur in Maharashtra.
प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक कपड़ा अपशिष्ट संकट पर चर्चा की। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए देश में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
Prime Minister Modi urges students to pursue hobbies and develop new skills during summer vacations.
गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
Traditional New Year festivals being celebrated in different parts of the country today.
और विशाखापत्तनम में IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और गुवाहाटी में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।
And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we will talk about International Day of Zero Waste. So, Akashita, today is the International Day of Zero Waste, adopted by the United Nations General Assembly on 14th of December 2022. The day highlights the importance of bolstering waste management globally and the need to promote sustainable consumption and production patterns to address the waste pollution crisis. Every year, humanity generates between 2.1 billion and 2.3 billion tons of municipal solid waste. Without urgent action, the annual waste generation will hit 3.8 billion tons by 2050. Waste pollution threatens human health, costs the global economy hundreds of billions of dollars every year, and aggravates the triple planetary crisis: the crisis of climate change, the crisis of nature, land and biodiversity loss, and the crisis of pollution and waste. This year's theme, towards zero waste in fashion and textiles, focuses on the urgent need to take action to reduce the waste impact from the fashion and textile sector and promote sustainability and secularity.
वर्ष 2000 से 2015 के बीच कपड़ों का उत्पादन दोगुना हो गया, फिर भी अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 92 मिलियन टन कपड़ा कचरा पैदा होता है। ये हर सेकंड एक ट्रक भर कपड़ों को जलाए जाने या लैंडफिल में भेजे जाने के बराबर है। ये कपड़ा क्षेत्र में उत्पादन और खपत में तेजी से वृद्धि के कारण है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पैदा हो रहे हैं, खासकर ग्लोबल साउथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में कपड़ा कचरे की चुनौती पर भी प्रकाश डाला और कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बन गया है। श्री मोदी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि केवल 1% से भी कम कपड़ा कचरे को नए कपड़ों में रिसाइकल किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा कपड़ा कचरा पैदा होता है। और रम्या, अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ट्रेंड्स चल रहे हैं, हर दिन हर सेकंड्स नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो हम कितने कपड़े बदलेंगे
एक वो बात है। दूसरी बात यह है कि हम कितने सारे यूट्यूबर्स और ऐसे रील्स देखते हैं जो कहते हैं हमने यहाँ से हॉल लिया, इतने कपड़े लिए, हम उनको देख के सोचते हैं हम भी ये कपड़े लेंगे, वो जमा होते जाते हैं, एक बार पहनते फिर कभी नहीं पहनते।
जी, तो इसीलिए इससे बचे, कपड़ों को इकट्ठा करने से बचे और सस्टेनेबिलिटी को अपने जीवन में लाएं और कहीं ना कहीं अपने कपड़ों को रीयूज करें। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी में पहने गए कपड़े हम कभी दोबारा नहीं पहनते, अरे हमने पहना था, लेकिन इससे आप पानी की भी बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं,
और कपड़े को अलग तरीके से स्टाइल करके अलग स्टेटमेंट भी दे सकते हैं।
और आजकल हम कई ऐसे ट्रेंड्स देख रहे हैं जिसमें कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, स्टाइलिस्ट हैं, जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम पुराने कपड़ों को रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और उसे एक नए ट्रेंड में जो है परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सस्टेनेबिलिटी की ओर कदम बढ़ाएं और अपनी पृथ्वी से कचरे को कम करें और जल को सुरक्षित बनाएं।
बिल्कुल। सो एड्रेसिंग दिस चैलेंज रिक्वायर्स सिस्टेमिक चेंज थ्रू सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, एज आकर्षिता जस्ट स्पोक अबाउट, एंड अ जीरो वेस्ट अप्रोच इज द की टू दिस ट्रांजिशन। कंज्यूमर्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म बाय अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस लाइक रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइक्लिंग, शिफ्टिंग अवे फ्रॉम फास्ट फैशन एंड इन्वेस्टिंग इन ड्यूरेबल हाई क्वालिटी क्लोदिंग नॉट ओनली कंजर्व्स रिसोर्सेज बट ऑल्सो ऑनर्स ट्रेडिशनल सस्टेनेबिलिटी अप्रोचेस।
निजी क्षेत्र को ऐसे उत्पाद डिजाइन करके जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो टिकाऊ, मरम्मत योग्य और पुनर्चक्रण योग्य हों। जैसा कि हमने बात की रम्या कि हमें ऐसे कपड़े भी, ये ऐसा नहीं है कि हम ही ऐसे कपड़े खरीदें और हम ही उसको रिसाइकल रीयूज करें। ये जो निजी क्षेत्र हैं जो ऐसे कपड़े को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ये उनका भी उत्तरदायित्व है कि वो ऐसे कपड़े बनाएं जिसको रिसाइकल रीयूज किया जा सके
या अलग अलग तरीके से पहना जा सके।
जी, तो नवाचार और जवाबदेही को व्यवसाय रणनीतियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। सरकारें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजनाओं को लागू करके, हानिकारक रसायनों को विनियमित करके, पुनर्चक्रण बुनियादी ढांचे में निवेश करके और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था में संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए टिकाऊ व्यवसाय मॉडल को प्रोत्साहित करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
बिल्कुल।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
लास्ट ईयर्स वायनाड लैंडस्लाइड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स दैट हिट केरला, टेकिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स एंड डिस्प्लेसिंग मेनी। इग्नाइटिंग होप्स फॉर दोज डिस्प्लेस्ड इन द वायनाड लैंडस्लाइड्स, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन इनॉग्रेटेड द टाउनशिप प्रोजेक्ट टू रिहैबिलिटेट द अफेक्टेड फैमिलीज लास्ट थर्सडे, मार्किंग अ न्यू बिगिनिंग। मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
Chief Minister Pinarayi Vijayan laid the foundation stone for the township aimed at rehabilitating the survivors of the Wayanad landslide. Speaking at the event, the Chief Minister emphasized that the unity of the people is the strength of the state during such challenging times. He noted that while the state faced immense financial difficulties in the aftermath of the disaster, the government and the people have continued to move forward with the project despite economic pressures. Chief Minister also launched a portal for the public to access full details of the project and for the citizens to participate. The event was attended by ministers, Leader of Opposition and MP Priyanka Gandhi. The township will be built on 64 acres of land, with houses being constructed on 7-cent plots, each covering an area of 1,000 square feet. The township will include essential facilities such as health center, modern Anganwadi, public institutions, commercial spaces and a community center. The devastating multiple landslides was hit on July 30, 2024 in areas including Mundakai, Churalmala, Attamala and Punjirimattam in Wayanad district, leading to a tragic loss of over 290 lives. Many individuals have also been reported missing in the aftermath of the landslides. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
पूरे विश्व के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। एक रिपोर्ट।
टीबी के हानिकर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने और वैश्विक स्तर पर इसके उन्मूलन के प्रयास तेज करने के लिए द्वीप समूह में भी टीबी दिवस मनाया गया। हाँ, हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास थीम के साथ ये दिन इस बीमारी के खतरे से निपटने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध होने का अवसर देती है। टीबी दिवस के अवसर पर द्वीप समूह में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई गईं, कई प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। विभिन्न स्थानों पर पावर पॉइंट प्रस्तुति द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पी लाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए कहा,
टीबी का मरीज खांसता है या छींकता है, जोर से बातें करता है, तब जो है उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं हवा में, वो आसपास के जो लोग हैं वो जब सांस लेते हैं तो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो उसके बाद फिर बीमारी होना ना होना वो दूसरे व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक शक्ति के ऊपर में डिपेंड करता है। टीबी से लड़ने में सिर्फ दवा से काम नहीं चलता। जैसे मैंने कहा कि कुपोषण की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, तो एक सही न्यूट्रिशन, एक संतुलित आहार मिलना और उसमें प्रोटीन्स का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक टीबी पेशेंट को ₹1,000 प्रति महीने उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है।
परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से मैं पूजा सिंह।
Jalandhar's Gurinder Veer Singh has set a new national record by completing 100-meter race in 10.2 seconds during the Indian Grand Prix 1 2025 athletics meet held at the Sports Authority of India complex in Bengaluru on Friday. More from our correspondent.
जलंधर के नजदीक स्थित भोगपुर के पटियाल गांव के रहने वाले गुरिंदरवीर सिंह ने अपने इस फाइनल में फॉर्मर नेशनल रिकॉर्ड मेकर मणिकांता और इमलान बोर्गन को हराया है। इस जीत के साथ उन्होंने एशियन चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इनकी उपलब्धियों में 2017 में यूथ एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, साउथ एशियन गेम्स 2019 में सिल्वर, जूनियर एशिया चैंपियनशिप 2018 के रिले इवेंट में ब्रॉन्ज और यूरो एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल शामिल है। गुरिंदरवीर के पिता कमलजीत सिंह, जो पंजाब पुलिस में हैं, उन्होंने इनके बचपन में ही इस धावक में एक खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचान लिया था। जलंधर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने गुरिंदरवीर सिंह की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए इनके परिवार व खेल प्रेमियों को बधाई देते हुए कहा कि देश का नाम रोशन करने वाले इस खिलाड़ी के जलंधर आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा। परिक्रमा के लिए जलंधर से राजेश बाली।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
इन टेबल टेनिस, इंडियाज टॉप रैंक्ड मानव ठक्कर बाउड आउट ऑफ द WTT स्टार कंटेंडर इवेंट आफ्टर लूजिंग टू अनसीडेड फ्रेंचमैन थिबॉल्ट पोरे 1-3 इन द मेंस सेमीफाइनल्स इन चेन्नई टुडे। इन द मेंस फाइनल्स टुडे थिबॉल्ट पोरे विल फेस साउथ कोरियाज ओ जुन सुंग, हु डिफीटेड फ्रांसिस फ्लावियन कोटोन 3-0 इन द अदर सेमीफाइनल। Yesterday, Manav became the first Indian to reach the semi-finals of a WTT Star Contender event after a win over South Korea's Lim Jong-hoon in Chennai. And now news from the defense sector.
भारतीय वायुसेना IAF हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियुकॉस 25 में भाग लेगी। यह अभ्यास कल से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर होगा। भारतीय वायुसेना के दल में SU-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ लड़ाकू क्षमता वाले IL-78 और C-17 विमान शामिल होंगे। इनियुकॉस हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। ये वायु सेनाओं के लिए अपने कौशल को निखारने, सामरिक ज्ञान का आदान प्रदान करने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस अभ्यास में वास्तविक युद्ध परिदृश्यों के अंतर्गत 15 देशों की कई वायु और सतही इकाइयां शामिल होंगी। इसे आधुनिक समय की हवाई युद्ध चुनौतियों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये वायु अभ्यास में भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तालमेल और अंतर संचालन को बढ़ाने का एक मंच है। यह अभ्यास संयुक्त वायु संचालन की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने, जटिल वायु युद्ध परिदृश्यों में रणनीति को परिष्कृत करने और परिचालन संबंधी सर्वोत्तम प्रणालियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। एंड्राविडा से संचालित सभी ऑपरेशनों से भारतीय वायुसेना की भागीदारी न केवल इसकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगी अपितु भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी सीखने और बेहतर समन्वय में भी योगदान देगी।
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Rajasthan Diwas is celebrated on the 30th of March every year. The state was formed on March the 30th, 1949, when Rajputana was merged into India. Jaipur, being the largest city, was declared as the capital of the state.
After the independence of India, the task of uniting India was undertaken under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel. On the 17th of March 1948, Indian government took over the supervision of Bharatpur and Alwar states as the rulers failed to uphold peace in the riot-affected princely states. Neighbouring regions of Karoli and Dholpur also agreed to come together to form what was known as the Matsya Union.
March the 25th, 1948, 10 more states, namely Kushalgarh, Banswara, Kota, Bundi, Jhalawar, Tonk, Shahpura, Pratapgarh, Dungarpur and Kishangarh of the southern and southeastern Rajputana joined together to structure another union that is named East Rajasthan. Subsequently, the Udaipur state Mewar also got united in Rajasthan Union on April the 18th, 1948. The name was then changed to United Rajasthan. On March the 30th, 1949, four more states, viz. Jodhpur, Jaipur, Bikaner and Jaisalmer joined this integration and the region came to be known as the Greater Rajasthan. The principalities of Nimra and Lava also joined the integration. Thus, March the 30th came to be celebrated as the Rajasthan Diwas.
On the 15th of May 1949, the Matsya Union was amalgamated into Greater Rajasthan and thereafter the confederation was named as the United State of Greater Rajasthan. Sirohi state joined the federation on the 26th of January 1950, which got the name United Rajasthan. On the proposal of the state reorganization committee, Ajmer-Mewar region was also fused with Rajasthan in November 1956, and thus emerged the contemporary state of Rajasthan.
We also remember freedom fighter Karim Khan, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. A resident of District Karoli, Rajasthan, Karim Khan was the younger brother of Mehrab Khan, a prominent leader of the independent activists in Kota. He was involved in the attack on the political agency Kota on the 15th of October 1857, in which Captain C.E. Burton, the political agent, and his two sons were killed. He fought against the British forces on the 30th of March 1858, was captured, and later hanged by the British troops. We salute the great martyr.
We also remember freedom fighter Surendranath Nag, who was martyred on the 30th of March 1943. Nag was born on the 23rd of May 1917 at Aberdeen, Port Blair in the Andaman Islands. He used to work as sub-assistant surgeon under the British administration, but later joined the Indian Independence League and worked for supporting it financially. He was arrested on the 22nd of January 1943 on the charge of spying and imprisoned in cellular jail. He was shot dead in the Andaman Islands on the 30th of March 1943. We salute the great martyr.
और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज आनंद बख्शी की पुण्यतिथि है। वे बचपन से ही फिल्मों में काम करके शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने का सपना देखा करते थे। वे फिल्मी दुनिया में गायक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। अपने वजूद को तलाशते आनंद बख्शी को लगभग 7 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा। वर्ष 1965 में जब जब फूल खिले प्रदर्शित हुई तो उनके गाने परदेसियों से ना अखियां मिलाना, ये समा समा है ये प्यार का, एक था गुल और एक थी बुलबुल सुपरहिट रहे और गीतकार के रूप में उनकी पहचान बन गई। इसी वर्ष फिल्म हिमालय की गोद में उनके गीत चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था को भी लोगों ने काफी पसंद किया। वर्ष 1967 में प्रदर्शित सुनील दत्त और नूतन अभिनीत फिल्म मिलन के गाने, सावन का महीना, पवन कर शोर, युग युग तक हम गीत मिलन के गाते रहे जैसे सदाबहार गानों के जरिए उन्होंने गीतकार के रूप में नई ऊंचाइयों को छू लिया। 4 दशक तक फिल्मी गीतों के बेताज बादशाह रहे आनंद बख्शी ने 550 से भी ज्यादा फिल्मों में लगभग 4000 गीत लिखे। उन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना।
In a 1983 interview with Doordarshan, Anand Bakshi recounted that after his initial studies, he joined the Indian Navy, where due to a paucity of time, he could only write occasionally. He continued to write poetry whenever time permitted and used his songs and lyrics in local programs related to his troops. He worked in the Navy for many years and simultaneously tried to market his songs in the Mumbai film world. He came to the Hindi film industry to make a name for himself in writing and singing, but ended up becoming more successful in writing lyrics. He got his first breakthrough in a Brij Mohan film titled Bhala Aadmi in 1958, acted by Bhagwan Dada. He wrote 4 songs in this film for music director Nisar Bazmi. His first song in this film was Dharti Ke Lal Na Kar Itna Malal, which was recorded on 9th November 1956, in his own voice on All India Radio interview. After writing for a few movies from 1958 onwards, he found first success in 1962 with Mehndi Lagi Mere Haath Mein, which was the music given by Kalyanji Anandji with Raj Kapoor as a producer. He had the knack for giving out really big, deep meaning sentences in just a few words, like this song.
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम।
आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, फिल्म पट कथा लेखक मनोहर श्याम जोशी ने। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों में बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हंसी सपने, हम लोग के कारण वो सबके दिलों की धड़कन बन गए। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नामक पुस्तक की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों में प्रमुख धारावाहिक हम लोग, बुनियाद, हमराही, जमीन आसमान और प्रमुख उपन्यासों में कसब कौन हूं मैं, उस देश का यारो क्या कहना, बातों बातों में काफी प्रसिद्ध हुए। पुरस्कार की बात करें तो मनोहर श्याम जोशी को सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1993-94 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से अलंकृत किया गया था।
टुडे वी आर रिमेम्बरिंग बंगाली राइटर Shorodindo Bondhopadhyay on his birth anniversary. He was actively involved with Bengali cinema as well as with Bollywood. He was the creator of the Bengali detective Byomkesh Bakshi. Shorodindo composed stories of a wide array of varieties, including novels, short stories, crime and detective stories, plays and screenplays. He completed his matriculation in 1915 from a school in Munger in Bihar. He wrote his first story, Pretpuri, a Boroda story, when he was only 15 years old. He was only 30 years old when he gave up his practice of law and started working as a writer. In 1928, Himanshu Roy invited him to Bombay to write screenplays. Till 1952, he wrote films and then settled down in Pune to pursue a full-fledged career as a writer. Let's listen to a dialogue from the iconic serial Byomkesh Bakshi.
कमिश्नर साहब हैं?
हुजूर, कोई ब्योमकेश बख्शी आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं आपसे टेलीफोन पर बात हो चुकी है।
हाँ हाँ, भेज दो अंदर।
नमस्कार जी, मेरा नाम ब्योमकेश बख्शी है, आपसे टेलीफोन पर बात हुई थी।
बैठिए बैठिए।
धन्यवाद।
हाँ कहिए, क्या बात है?
चाइना टाउन में जो खून हो रहे हैं, सुना है आप उन्हें लेकर काफी परेशान हैं।
आप हमारे टेलीफोन की बातें सुन रहे थे?
बिल्कुल नहीं, मैं तो बाहर था।
फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि हम चाइना टाउन में होने वाली हत्याओं को लेकर परेशान है?
आपकी टेबल पर चाइना टाउन में हुए खून की खबरों के अखबार जो पड़े हुए हैं सर।
आज हिंदी फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार देविका रानी की जयंती है। 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में उनका जन्म हुआ था। जिस दौर में लड़कियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, उस दौर में उन्होंने लंदन स्थित रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद अभिनय की ओर कदम बढ़ाया। 1934 में मुंबई में उन्होंने अपने पति हिमांशु राय के साथ बॉम्बे टॉकीज नाम के फिल्म स्टूडियो की स्थापना की, जिसने भारतीय सिनेमा को अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला, लता मंगेशकर, किशोर कुमार जैसे अनगिनत कलाकारों से रूबरू कराया। 10 साल की फिल्मी करियर में उन्होंने अछूत कन्या, जीवन प्रभात, इज्जत, वचन, निर्मला, जीवन नया और दुर्गा जैसी हिट फिल्मों में काम किया और फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन स्क्रीन यानी भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला का तमगा हासिल किया। वे पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1969 में जब दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की शुरुआत हुई तो पहला अवार्ड देविका रानी को ही मिला। देविका रानी फिल्म इंडस्ट्रीज की प्रथम महिला बनी। उस दौर की ज्यादातर कलाकारों की तरह उन्होंने भी फिल्मों में अपने गीत खुद गाए। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में फिल्म अछूत कन्या का ये मशहूर गीत।
टुडे वी आर रिमेम्बरिंग लेजेंडरी पेंटर Sambanand Munappa Pandit, popularly called S.M. Pandit, on his death anniversary. Hailing from Karnataka, he began his commercial career in 1938 by painting MGM show cards for Bombay's Metro Theatre. Most of his subjects oscillated between events from classical Indian literature, including the Ramayana, the Mahabharata, the Puran, and the contemporary cinema of his times. He infused a rare blend of artistic virtuosity and filmy glamour to his portrayal of romantic characters like Radhe Krishna, Nala Damayanti, and Vishwamitra Menaka, as also the many heroes and heroines of Hindi cinema. Pandit was the founder member of the Commercial Artists Guild, Mumbai. He was a recipient of the Gold Medal of the Royal Academy in London and was also conferred the State Lalit Kala Academy Award in 1983. Today is also the birthday of director, screenwriter and film producer Abhishek Chaubey, who's known for his very commercially successful and critically acclaimed films like Ishqiya, Ded Ishqiya, Urta Punjab and A Death in the Ganj.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और रम्या को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं।
अच्छा तो हम चलते हैं,
फिर कब मिलोगे?
जब तुम कहोगे
जुम्मे रात को।
हाँ हाँ आधी रात को।